नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिरे मत्तु यारदीयध्वनियो लोकहितवमाडिदे मूरु लोकदल्लि यार्कीर्तिव्याप्तवागिदे अन्थदेवदेवरल्लि नन्नतलियुबागिदे अन्थदेवदेवरल्लि नन्नतलियुबागिदे यार ज्ञान पाप कर्म गेद्दु शुद्धवागिदे अमितवाद शक्तियिंद सकल तत्व तिळिदिदे लोकदल्लि वीतराग पूज्य पदवी वंदिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलियुबागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलियुबागिदे पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज कौन सी भावना अविक्षण ज्ञानोपयोग भावना क्रम चौथे नंबर में आया है। पहले नंबर में दर्शन शुद्धि भावना भाई, दूसरे नंबर में विनय संपन्नता भावना भाई, तीसरे नंबर में शील व्रतों में अतिचार रहित भावना भाकर अब हम अविक्षण ज्ञानोपयोग भावना की अपेक्षा करते हुए अविक्षण ज्ञानोपयोग बनना चाहते। अविक्षण ज्ञानोपयोग एक शब्द है, लेकिन फिर भी जब शब्द शब्द मिलकर के कोई एक बड़ा शब्द बनता है तो उसको व्याकरण की दृष्टिकोण से समास पद माना जाता है। समास यानी संक्षिप्त, अनेक शब्दों का समीकरण, संक्षिप्तीकरण, इसको समास कहते हैं। अविक्षण ज्ञानोपयोग एक समास पद है, समास पद वाला शब्द है। अविक्षण ज्ञान और उपयोग ये तीन शब्द एक शब्द में मिले हुए हैं। तीन शब्द मिलकर के भी एक शब्द बनता है। शब्द स्वयं अगर अकेला बन जाए तो उसको समास पद नहीं कहते, वो स्वतंत्र पद है। पर शब्द शब्द मिलकर के अन्य शब्दों को जोड़कर जब शब्द का निर्माण होता है तो वह परतंत्र पद माने जाते हैं। शब्दों का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वह स्वतंत्र होते समय, स्वतंत्र रहते समय अलग होता है। और जब शब्द मिलकर के अनेक शब्दों तो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनता है तो वह समास पद होकर के मूल अर्थ को गौण करके उत्तर अर्थ प्रदान बन जाता है, इसको समास पद कहते हैं। अविक्षण ज्ञान और उपयोग ये तीन शब्द हैं। अविक्षण अर्थार्थ बार बार निरंतर, मराठी में कहेंगे सतत सारक 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 काय म्हणता तुम्ही? मराठी में भी तो है, सारक सारक काय करता तुम्ही? सारक शब्द भी है, सारके सारके स्वाध्याय मोड़ो, तीनों आ गए, कन्नड़ भी आ गया, मराठी भी आ गया। मराठी में भी सारके शब्द, ये बॉर्डरी कन्नड़ है, उधर मैसूर तरफ जो कन्नड़ भाषा है वो अलग है। निरंतर कन्नड़ शब्द है, लेकिन वह शब्द वास्तव में हिंदी शब्द ही है, कई संस्कृत शब्द है, कई संस्कृत शब्द कन्नड़ में प्रयुक्त हुए हैं, कई संस्कृत शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त हुए हैं, कई संस्कृत शब्द मराठी में भी हैं। भाषाएं अनेक अनेक हैं, लेकिन सभी भाषाओं की उत्पत्ति स्थान प्राकृत भाषा है। प्राकृत को ही जब सभ्य बनाया गया तो संस्कृत बन गया, और संस्कृत के पश्चात सारी भाषाओं की उत्पत्ति होती है। कन्नड़ मराठी की जननी माता कौन है? संस्कृत। और संस्कृत की जननी भाषा कौन है? प्राकृत। और प्राकृत की जननी भाषा अर्धमागधी कहो प्राकृत कहो एक ही बात है। वो मागध देश में प्राकृत जो भाषा चलती थी उसका नाम मागध देश से प्रसिद्ध किया अर्धमागधी, मने आधे मागध देश में जो प्राकृत चलती थी उस समय वो अलग, और आधे मागध देश में जो प्राकृत भाषा चलती थी वो अलग। इस प्रकार अर्ध मागधी यानी भगवान महावीर जिधर रहते थे, जिनका जन्म स्थान क्या माना जाता है? वैशाली या कुंडलपुर भी कहते हैं, वैशाली। उस देश में ये जो प्राकृत भाषा चलती थी उस देश का नाम अर्ध मागधी, और फिर जिधर शेष मागध देश में भाषा चलती थी उसमें और इसमें शब्दों के प्रयोग का कुछ अलग अलग व्यवहार होता था, प्रयोग व्यवहार, और शब्द भी उच्चारण अलग अलग किए जाते थे। जैसे मराठी पुणे की मराठी और कोल्हापुर की मराठी अलग अलग, थोड़ी सी तो अलग तो होता ही है। मैसूर कन्नड़ और बॉर्डरी कन्नड़ मराठी बॉर्डर बहुत अंतर है। तो ऐसी भाषा अर्धमागधी भाषा में भगवान महावीर ने उपदेश दिया था बाल्यावस्था में। किस भाषा में बोलते थे महावीर भगवान? प्राकृत भाषा में। महावीर भगवान जब छोटे थे तब संस्कृत नहीं बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। कोई संस्कृत का ज्ञाता आजकल का जाकर के महावीर भगवान से कहें कि भगवान नमोस्तु का क्या अर्थ होता है, वो कहेंगे नमोस्तु क्या चीज है, नमोत्थु बोलो नमोत्थु। महावीर भगवान छोटी अवस्था में भी नमोत्थु बोलते थे और बड़ी अवस्था में भी नमोत्थु बोलते थे। जो प्रकृति से भाषा बोली जाती है उसका नाम प्राकृत। छोटी अवस्था में बच्चे जो बोलते हैं उसका नाम प्राकृत, फिर बाद में हिंदी मराठी कन्नड़ संस्कृत बाद में सीखते हैं। किसी भी भाषा को ओरिजिनल बचपन के उच्चारण से बोलेंगे तो प्राकृत जैसे ही बिल्कुल उच्चारण, कुछ किसी भी भाषा का जो उच्चारण होगा वो प्राकृत के रूप में ही होगा। परंतु जब हम उस उच्चारण को सुसंस्कृत करके सभ्य बनाकर बोलेंगे तो संस्कृत कहलाएगी, हिंदी कन्नड़ मराठी इत्यादि। आज ज्ञानोपयोग अविक्षण ज्ञानोपयोग भावना की पूजा की है। कैसी लगी पूजा? अभी की नहीं है ना, अभी अभी तो सुनना है, सुन करके विशुद्धि बढ़ाना है और परम विशुद्धि के साथ अर्घ्य समर्पित करना है। ये अर्पित करते समय दृष्टि की निर्मलता उच्च स्थान पर पहुंचनी चाहिए। 25 दोषों से रहित सम्यक तो है ही, वो सम्यक दर्शन की निर्मलता है, किंतु उसके साथ साथ जिसको हम दूसरा एक और जोड़ रहे हैं, वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण पड़ता है। तो आज ज्ञान जोड़ा जा रहा है, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, बार बार हमारा उपयोग ज्ञान में, श्रुत में, श्रुत के अभ्यास में लगना चाहिए। श्रुत, श्रुत की उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुई, श्रुत कहाँ से आया, तीर्थंकरों से आया। ये तीर्थंकरों से जो हमारे यहाँ तक आया, हमारे कानों तक आया, वह द्रव्य श्रुत था या भाव श्रुत? द्रव्य श्रुत था, अक्षरात्मक था। यह अक्षरात्मक जो श्रुत होता है यह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य यानी पुद्गल, शब्द पुद्गल होते हैं या चेतन होते हैं? पुद्गल होते। भगवान के मुखारविंद से जो निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिरी, वो आवाज थी, वो एक शब्द, गूंजने वाली शब्द ओम के रूप में थी, ध्वनि, वाणी, और वह अनंत अर्थ को लिया हुआ, अनंत अर्थ जिसमें गर्भित है, ऐसी वाणी थी। उस वाणी में डुबकी लगाएंगे तो कोई अंत आ ही नहीं सकता। हम उतरते उतरते उसका अंत ढूंढना चाहे तो आएगा नहीं, ऐसी निरक्षरी ध्वनि थी। और उसके अर्थ को समेटने वाले नीचे बैठे थे, वो कौन? गंधर्व परमेष्ठ। उन्होंने भगवान के दिव्य ध्वनि को गहराई से सुना, समझा, कुछ उसमें से सूत्र इकट्ठे किए। जो सूत्र एकत्रित हो गए उसका नाम द्वादशांग वाणी। और गंधर्व परमेष्ठी जितने सूत्रों को इकट्ठा करते हैं, उतने ही सूत्रों को और कोई दूसरा इकट्ठा कर ले तो उनको हम श्रुत केवली कहते हैं। गंधर्व परमेष्ठी स्वयं अपने आप में श्रुत केवली तो है ही, क्योंकि उतने सूत्रों को इकट्ठा करने की और अपने मेमोरी कार्ड में धारणा मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभ शम से उत्पन्न जो मति ज्ञान है, धारणा मति ज्ञान, उसमें उत्कृष्ट क्षोभ शम होने के कारण इतनी कैपेसिटी है कि भगवान जो बोलते हैं उसके सारभूत विषय को वो इकट्ठा करके अपने पास रख सकते थे, जो पर्याप्त मात्रा में संसारी भव्य जीवों को समझने के लिए हो सकता है, उतना इकट्ठा करके रख सकते हैं। उसी को सुन सुन करके आज तक भव्य जीवों ने कल्याण किया। पंचम काल में साक्षात महावीर भगवान की वाणी तो हम सुन नहीं सकते, परंतु उसको सुनकर गंधर्व परमेष्ठी ने जो संग्रह किया था अपने शिष्य परंपरा से प्रवाहित किया, और यह आज तक प्रवाहित होता आ रहा। द्रव्य श्रुत गुरु की परंपरा से यह श्रुत आया, हिमालय से गंगा निकली, और हिमालय से निकलने वाली गंगा में पानी सतत बहता है, 12 महीने बहता है, क्या कभी कभी बहता है? उसका जल सतत प्रवाहित रहता, गंगा नदी कभी सूख नहीं सकती। ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, गंगा, सिंधु, रोहित द्रोहिताशा हरिद्वरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपिकोला सरितस्तन मध्यगा, ऐसा जो कहा है ना, ये 14 महानदियां कभी सूख नहीं सकती, अनादिकाल से प्रवाहित हैं। जिस प्रकार से ये नदियां सूख नहीं सकती, उसी प्रकार हमारा ज्ञानोपयोग सूख नहीं सकता कभी। आत्मा एक द्रव्य है, चेतन द्रव्य, और इसके भीतर ज्ञान, वह जानने का काम करने वाला एक धर्म है, एक शक्ति है, एक पावर है। आत्मा के भीतर वैसे अलग 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 अनंत पावर है, जिसको अनंत गुण बोलते हैं, पर उन अनंत गुणों को भी जानने वाला कौन है? जानने वाला ज्ञान है, जो अनंत गुणों का परिचय करा के बतलाने वाला ज्ञान ही है। ज्ञान को आत्मा से अलग कर दो, अलग तो नहीं हो सकता, अलग करके माइनस करके सोचो अन्य गुणों का क्या होगा। एक दर्शन गुण और है जो देखने का काम करता है, उसको भी चेतन कहा, ज्ञान भी चेतन है। इन दोनों को अलग कर दो, माइनस कर दो, बचे हुए जो गुण हैं वो कैसे हैं? चेतन है या अचेतन है? वो जानने का काम कर सकेंगे क्या? वो देखने का काम कर सकेंगे क्या? वो समझने की चेष्टा कर सकेंगे क्या? नहीं। हिमालय से जो गंगा निकली, वो गंगा का जल प्रवाहित है, जल ज्ञान है, उसका प्रवाह उपयोग है। जल क्या है? ज्ञान है, और उसका प्रवाह उपयोग है। और यह जल आया कहाँ से? इसका आधार स्थान कौन है? वो सरोवर जो हिमालय में रहता है, वो सरोवर, उसका नाम मानस सरोवर। पद्म सरोवर से निकली गंगा अलग है, मानस सरोवर से निकली गंगा अलग है। हम मानस सरोवर से परिचित हैं, पद्म सरोवर से तो परिचित नहीं। वहां पर भी गंगा और सिंधु दो नदियां निकली, लेकिन वे नदियां बड़ी बड़ी हैं। ये उन्हीं नदियों का नाम यहाँ रखा गया है जो हिमालय से दो गंगा और सिंधु निकली। महानदियों का नाम भी छोटे नदी के लिए रखा गया है, इसलिए इनका नाम गंगा और सिंधु पड़ गया। वस्तुतः ये ओरिजिनल गंगा सिंधु नहीं है, जैसे हम नाम रखते हैं। तीर्थंकर 24 हो गए हैं, इसलिए किसी का नाम आदिनाथ, किसी का नाम अजित, किसी का नाम महावीर, किसी का नाम पारस रख करके हम, पारस बड़ा प्यारा है। आपका पारस बड़ा प्यारा है क्या? वो पारस बड़े प्यारे हैं। अपना पारस भी उनके समान ही बड़ा प्यारा बन जाए, इसलिए उनका नाम पारस रख देते। कितनी सद्भावनाएं हैं माता पिता के, बच्चों का नाम रखते हैं तो सुंदर नाम चुन करके नाम रखते हैं। जिनसेन आचार्य ने बच्चों का नाम रखने के लिए 1008 नामों से भगवान की स्तुति की, क्योंकि लोग 24 ही नाम कब तक रखेंगे? वही वही नाम कब तक रखेंगे? 1008 नामों से जिनसेन आचार्य ने भगवान की स्तुति की, और अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करके स्तुति किया। उन नामों को भी अपने बच्चों के लिए रखा जा सकता है, रखना चाहिए। आजकल नए नए नाम रखने लगे, बहुत अच्छा लगता है। किसी का नाम संयम रख देते हैं, माता पिता ही रख देते हैं। महाराज से आकर के भी पूछते हैं कि महाराज क्या नाम रखा जाए, तो महाराज भी कहते हैं हम संयमी हैं, संयम रखो। और नाम तो संयम बहुत अच्छे आनंद से और उत्सव के साथ रख देते हैं। जिस दिन नाम रखा जाता है, उत्सव मनाया जाता है, नाम रख देते हैं संयम। क्यों? गुरु महाराज ने कहा संयम रखो, मंगल नाम है, शुभ नाम है, संयम रख देते हैं। और उस संयम को वैराग्य हो गया तो असंयम में खींचने का प्रयत्न भी माँ बाप ही करते हैं। वो रोने लगते हैं। फिर उस समय क्यों याद नहीं आती कि गुरु के पास जाकर के हमने संयम नाम रखवाया है और संयम ही लेने जा रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है हमारा? लाभ ही तो हो रहा है। यही हमारा बेटा संयम धारण करेगा तो इनके चरणों में जाकर के हमारा समाधि मरण बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। संलेखना मरण कराएगा, ये तो हमारे काम में आने वाला है। ऐसा विचार क्यों नहीं आता? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, माता पिता को ज्ञानी तो बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है। अवीक्षण ज्ञानोपयोग का ही प्रवचन चल रहा है। अवीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ होता है बार बार सत्संग करना, बार बार प्रवचन सुनना, बार बार जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अध्ययन करना, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का सत्संग ही हमारे लिए अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना का कारण बन सकता है। केवल साल भर में एक बार पूजा करने से, अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना की पूजा करने से, आठ द्रव्य चढ़ाने से क्या भावना में निर्मलता आकर तीर्थंकर प्रकृति के बंध में क्या वह कारण बन सकती है? ये पूजा की भावना हो गई। हाँ, भावना किसकी हो गई? आठ द्रव्यों की और पूजा की, और भगवान को थोड़ा सा तीन चार गुणों को स्मरण करके उन गुणों की भक्ति की, पूजा की, प्रशंसा की, स्तुति की, हे भगवान बहुत आप अच्छे हैं और हम पूजा करने आए बस, और ये द्रव्य चढ़ा के जा रहे हैं, बस हो गया। इससे ज्यादा क्या हुआ? पूजा करना ही भावना नहीं है, भावना ये निरंतर चलना चाहिए, ये साल भर चलना चाहिए, अगले दश लक्षण और षोडश कारण पर्व तक शास्त्र स्वाध्याय का क्रम, अवीक्षण ज्ञान उपयोग सतत हमारा चलता जाना चाहिए। अवीक्षण यानी क्या हुआ? बार बार निरंतर। और ज्ञान यानी क्या हुआ? आत्मा में रहने वाली ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से हम समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानते हैं। कैसे पदार्थ? ज्ञेय पदार्थ यानी जानने योग्य जो पदार्थ हैं, उन सब को जानते हैं। आत्मा में रहने वाले जो ज्ञान और दर्शन को छोड़कर, दर्शन को भी निकाल दो कोई बात नहीं, ज्ञान को छोड़कर अन्य जो ज्ञान हैं, जो गुण हैं, अन्य जो गुण हैं, उनका ज्ञायक कौन? ज्ञायक यानी जानने वाला, ज्ञान। तो अन्य गुण ज्ञान के लिए क्या बन गए? जानने के योग्य बन गए, अर्थात ज्ञेय बन गए। जो जानने योग्य होता है उसको ज्ञेय कहते हैं, और जो जानता है, जानने की जो शक्ति है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ये जल्दी समझ में आना चाहिए, बिल्कुल इशु गति से जल्दी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इशु को समझ में आए न आए, लेकिन इशु गति से सबको समझ में आए। ज्ञान और ज्ञेय का फर्क हमें सतत मालूम रहना चाहिए, क्योंकि इससे इससे बहुत बड़ा उपकार होता है। किस पर? अपनी आत्मा के ऊपर। कैसे उपकार होता है? देखो, हमारे पास ज्ञान है क्या? नहीं है। यह निरंतर जानने का काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ज्ञान जानने का काम कर रहा है, और उसी ज्ञान के माध्यम से जो निरंतरता चल रही है जानने की, वो उसका उपयोग है। ज्ञानस्य परिणति ही उपयोग। ज्ञान की जो परिणति है उसको उपयोग कहते हैं। परिणति यानी परिणमन। ज्ञान गुण में जो परिणमनशीलता है, जानने की परिणमनशीलता है, वो जो चेतन का प्रवाह है जिसका नाम चेतन भी है, वो उपयोग चेतन वाला जो चेतन गुण के कारण से समस्त ज्ञेयों को जान सकता है, निरंतर प्रवाहित रूप से जान सकता है, उसको हम उपयोग कहते हैं। ज्ञान अलग है, उपयोग अलग है। उपयोग यानी ज्ञान का प्रवाह, और ज्ञान यानी जानने की शक्ति। इतना डिफरेंस है। अब ज्ञानोपयोग यह आठ प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का? आठ प्रकार का। कैसा कैसा? देखो, ज्ञान तो पांच प्रकार के ही है जो सम्यक ज्ञान है, किंतु जब इसमें से कुछ ज्ञान मिथ्या भी होते हैं तो होने के बाद उनकी संख्या तीन अधिक हो जाती है। तो कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग, कुअवधि ज्ञानोपयोग, सुमति ज्ञानोपयोग, सुश्रुत ज्ञानोपयोग, सुअवधि ज्ञानोपयोग, मनःपरे ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग। ऐसे उपयोग के कितने भेद हो गए? ज्ञानोपयोग के आठ भेद हो गए। और हमारे पास वर्तमान में रहने वाला जो ज्ञान शक्ति है, वर्तमान की ज्ञान शक्ति, वो दो रूप में है। यदि सम्यक दृष्टि आत्मा है तो सुमति ज्ञानोपयोग और सुश्रुत ज्ञानोपयोग, ये दो शक्तियां हैं। सुमति ज्ञान ये जानने की शक्ति कहलाती है, और इसका निरंतर प्रवाह, निरंतर जानने का कार्य, प्रवाह रूप से जो अनादिकाल से चला आ रहा है, उसको हम सुखा नहीं सकते। जैसे गंगा नदी सूखती नहीं। कहां से निकली? हिमालय से। आत्मा हिमालय है, और यह हिमालय कचरे कूड़े से रहित है, मलिनता से मुक्त है। उसमें सफेद झक बर्फ के पत्थर जमे हुए हैं, बर्फ के खंड जमे हुए हैं, और हिमालय को देखेंगे तो कितना पवित्र है वो, सफेद दिखता है। हिमालय सफेद दिखता है, और हिमालय का वह पानी पिघल करके तो बाहर आ रहा है। हिमालय आत्मा है, उसके ऊपर जमा हुआ बर्फ जल है, लेकिन घनीभूत है। वह घनीभूत जल स्वभाव से ही प्रवाहित होने की योग्यता भी रखता है, लेकिन प्रवाहित होने के लिए निमित्त आवश्यक है, एक ढलान आवश्यक है, और ऊपर से तपन आवश्यक है। जब तक बर्फ के खंड तपते नहीं, जल में परिवर्तित नहीं होते, और जल तप गया, बर्फ तप गया और जल बन गया, ढलान नहीं मिलता है तो प्रवाहित नहीं होता। जल की परिस्थिति तो ऐसी है लेकिन आत्मा में ज्ञान की परिस्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि यह चेतन आत्मा है। आत्मरूपी द्रव्य के द्रव्य रूपी हिमालय के ऊपर जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के ये दो खंड बर्फ के खंड विद्यमान हैं, उनमें प्रवाहित होने की योग्यता स्वभाव से ही है। लेकिन ज्ञान जब उपयोग में ढलता है तब प्रवाहित होता है। ज्ञान अकेला तो एक शक्ति है, शक्ति बाहर नहीं आती, प्रवाह उसका प्रवाह तरंग उसकी पर्याय उपयोग एक पर्याय है, वह पर्याय बाहर आती है। तो क्या समझना है यहाँ? यहाँ ये समझना है कि हमारे पास रहने वाले जो दो ज्ञान हैं, सबके पास दो ज्ञान है। जिसके पास सम्यक दर्शन है, 25 दोषों से रहित सम्यक्तों का पालन जो व्यक्ति कर रहा है, उसके पास कैसे ज्ञान है? दो, सुमति और सुश्रुत। और यदि सम्यक्तों का पालन नहीं कर रहा है तो वो कैसा है? कुमति और कुश्रुत। इतना समझ में आ गया? अब ज्ञानोपयोग का हमें सदुपयोग करना चाहिए कि दुरुपयोग, ये प्रश्न उठता है। सदुपयोग करना चाहिए तो सदुपयोग किस मार्ग पर लगाने पर होता है? परमार्थ, पारलौकिक या लौकिक? हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन इसको लौकिक मार्ग पर बहा दें, इनका उपयोग लौकिक क्षेत्र में होने लग जाए तो इसका दुरुपयोग होता है, और परमार्थ में लगा दें तो इसका सदुपयोग होता है। तो हमें कहाँ लगाना है? परमार्थ में, परमार्थ में लगाना है। परमार्थ क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो निर्मल मार्ग है आत्म कल्याण का, वह आत्म कल्याण का मार्ग ही परमार्थ है। और इसमें लगाने के लिए हमारे लिए उपयोगों का उपदेश कुंद आचार्य ने दिया है। ये उपयोग अलग हैं जो 8 प्रकार के हैं, पर कुंद आचार्य ने अपने समय सार, प्रवचन सार इत्यादि ग्रंथों में उपयोग का जो कथन किया है वे 3 हैं। कौन कौन से? अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये 3 उपयोग। और ये ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से 8। दर्शनोपयोग को और मिलाएंगे तो और संख्या बढ़ सकती है, और 4 मिलाना पड़ेगा। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग, ये 4 मिलाएंगे तो वो 12 बन जाते हैं। हमको 4 दर्शनोपयोग को तो छोड़ना है, क्योंकि उनकी चर्चा आज नहीं है, आज ज्ञानोपयोग की चर्चा है। ये ज्ञानोपयोग की चर्चा है इसलिए हमारे ज्ञान को किस प्रकार से रखा जाए ये चर्चा विशेष रूप से हमें करनी है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, हमारे साथ अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कभी भी सूखा नहीं, खत्म नहीं हुआ। हम निबोध पर्याय में भी रहे तो अक्षर के अनंत व भाग प्रमाण ज्ञान जीवित था, प्रवाहित था, जितना जीवित था उतना ही प्रवाहित था, ये मिटा नहीं। आत्मा का ज्ञान मिट नहीं सकता, आत्मा का उपयोग मिट नहीं सकता, ज्ञानोपयोग। ज्ञान नहीं मिटता है तो ज्ञानोपयोग कैसे मिटेगा? जल ही नहीं मिटता है तो जल का प्रवाह कैसे मिटेगा? जल है तो जल में प्रवाहित होने की भी शक्ति रहेगी और प्रवाहित जल होता ही रहेगा। वैसे ही आत्मा के भीतर जो अनंत शक्ति है ज्ञान की, वह अनंत शक्ति हमारे पास न होकर अभी सीमित शक्ति है, जो कि वह अभिव्यक्त है 2 ज्ञान के माध्यम से, 2 पर्यायों से अभिव्यक्त है। मति ज्ञान पर्याय और श्रुत ज्ञान पर्याय, इन दो पर्यायों के माध्यम से वह अभिव्यक्त हो रहा है। ये अभिव्यक्ति उपयोग कहलाता है। और ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये जो दोनों मिलकर के वस्तु को जानते रहते हैं, ये जानने की जो शक्ति है, इस शक्ति का नाम है ज्ञान शक्ति, और इसके परिणमन का नाम है उपयोग। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब ज्ञानोपयोग भावना को हम भा रहे हैं। कैसे भा रहे हैं? अभीक्षण, लेकिन साल भर स्वाध्याय नहीं किया, बार बार स्वाध्याय करने को कहता है अभीक्षण ज्ञानोपयोग, लेकिन हमने बार बार स्वाध्याय नहीं किया, बार बार सत्संग नहीं किया, बार बार प्रवचन में भाग नहीं लिया, क्लास में भाग नहीं लिया, क्योंकि हम 16 ही दिन के हैं ना, तो 16 दिन भी क्यों आए हैं? वो भी पूजा करने के लिए, और उसमें भी ज्ञानोपयोग की भावना तो पूजा के माध्यम से ही उसको निपटाना है, निरंतरता के रूप में नहीं। निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, करेंगे ना, करेंगे। शास्त्र हैं आप लोगों के पास, शास्त्र अगर नहीं हो तो हमसे पूछ लेना, अपने से पूछ लेना, हम बता देंगे कौन सा शास्त्र लाना और कौन सा शास्त्र लेकर के पढ़ना। पढ़ेंगे ना, जरा स्वाध्याय की प्रथा बढ़ेगी तो आगामी वर्ष जब आप दशलक्षण पर्व या षोडश कारण पर्व मनाएंगे, उस समय ज्ञानोपयोग भावना जब भाएंगे ना, उस समय अच्छी तरह से मन लगेगा। हम इसको कैसे भाना चाहिए, हमें ये समझ में आ जाएगा। तो स्वाध्याय परम आवश्यक है। स्वाध्यायम परमम तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा है। और हम कौन सा तप करते हैं? धनार्जनम परमम तपः, रात दिन दौड़ धूप होती है धनार्जन के लिए। ज्ञान भी तो एक धन है, ऐसा क्यों समझ में नहीं आता? ज्ञान क्या धन नहीं है? ज्ञान लक्ष्मी नहीं है क्या? ज्ञान लक्ष्मी, केवल ज्ञान लक्ष्मी, भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष लक्ष्मी का हमने पूजन किया, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, जब अरहंत पद को प्राप्त किया था तब हमने केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा की थी, नहीं की थी? लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, यह हमको मालूम ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी, उसमें भी जो लक्ष्मी की पूजा होती है उसको भी ठीक से नहीं जानती कि वो कौन सी लक्ष्मी। कोई समझे कि लक्ष्मी का जो फोटो होता है ना, वो जो साड़ी पहन करके बैठी हुई ना, वो लक्ष्मी, जिसके हाथ से पैसे गिरते हैं ना, वो लक्ष्मी। लक्ष्मी के कोई हाथ है, पांव है, मुख है, चेहरा है, साड़ी है, वस्त्र है, क्या है? लक्ष्मी तो आप मानते हैं धन लक्ष्मी, और इसकी, इस लक्ष्मी की उपासना आप रात दिन कर रहे हैं, तो फिर साड़ी वाली लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हो? कभी साक्षात धन गिरा है क्या फोटो से? वो चित्र में गिर रहे हैं जरूर, लेकिन वो रुपया बन करके क्या आपके थाली में, पूजन की थाली में गिरते हैं? सोचो, जो लक्ष्मी का फोटो है जिसकी हम पूजा करते हैं, ये वस्त्रधारी है क्या? नहीं, वस्त्रधारी की पूजा करने को जिनेंद्र भगवान कहते हैं, तो वो लक्ष्मी सैमी है क्या? सैमी असंजदम न वंदे सूत्रा गया सूत्रा गया, असैमी वंदनी नहीं होता है क्योंकि वस्त्रधारी है। तो महाराज वो तो लक्ष्मी है, वस्त्रधारी तो रहेगी, स्त्री पर्याय है, तो स्त्री पर्याय की भी पूजा कहाँ करने को बताया है भगवान ने? भगवान कहते हैं पुरुष पर्याय भी वंदनीय नहीं जब तक वस्त्रधारी है। तीर्थंकर भगवान कहते हैं, मैं भी जन्म के पश्चात वस्त्र धारण किया, वस्त्र से ममत्व राग रहता है हुआ, जब तक वस्त्रधारी मैं रहा मैंने सबसे कहा मेरी भी वंदना पूजा तुम लोगों को नहीं करना चाहिए, जय जिनेन्द्र से ज्यादा कुछ नहीं। भगवान ने कहा ना, लेकिन भगवान वस्त्रधारी होकर के भी वस्त्रधारी की सेवा के लिए देव लोग आए, आते ही गृहस्थ अवस्था में बाल्यावस्था में आते ही, और तीर्थंकरों को तो भोजन वगैरह भी स्पेशल थाली बनाकर थाली बनकर। देखो भगवान का कितना डिमांड है, स्वर्ग में भी डिमांड है, वहां से थाली आती है खाना खाने के लिए, स्वर्ग से थाली आती है, तो डिमांड किया है ना, कब किया है, षोडश कारण भावना भाते हुए डिमांड किया है। अभी तो मैं भावना भा रहा हूँ, भावना भाने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, पुण्य कर्म का बंध होगा, तो ये पुण्य कर्म सबको डिमांड करेगा, ये पुण्य कर्म ही डिमांड करता है स्वर्ग के सभी देवों को। और इस पुण्य कर्म को बांध करके जब जीव तीर्थंकर होकर जन्म लेता है, जन्म के समय में भी देवताओं को आना पड़ता है क्योंकि डिमांड है। ये तीर्थंकर प्रकृति पुण्य कर्म स्वर्ग के इंद्र के सिंहासन को जन्म के काल में, गर्भ के काल में, जन्म के काल में, दीक्षा लेने के काल में, केवल ज्ञान के काल में, निर्वाण के काल में उनके सिंहासन को भूकंप करा देता है, कंपायमान करा देता है। स्वर्ग में भी भूकंप है लेकिन वो तीर्थंकरों के वजह से होता है केवल, अन्य टाइम में भूकंप नहीं होता। जैसे यहाँ जब कभी भी होता है, यहाँ भूकंप हो जाए तो आप लोग क्या समझेंगे अवधि ज्ञान लगाकर किस तीर्थंकर का जन्म हो गया, ऐसा नहीं। ये भूकंप हो जाए तो आप घर ही छोड़ करके भागने लगते हैं क्योंकि अपने को बचना है, प्राणों के संकट में फंस गए तो अपने को बचना है। लेकिन इंद्र भी ऐसा ही करता है, इंद्र घबराता नहीं। अगर सिंहासन के नीचे भूकंप हो रहा है, कंपायमान परिस्थिति हो रही, उपस्थित है कंपायमान परिस्थिति, तो उस समय इंद्र सोचता है ये किसका है, क्या हो गया है आज, किसका प्रभाव, तो अवधि ज्ञान लगा करके देखता है। हाँ, मध्यलोक में वैशाली में एक तीर्थंकर का जन्म हुआ है, वो जन्म के कारण से यहाँ पर सिंहासन कंपायमान हुआ, तो घबराते नहीं, उठ जाते हैं। जैसे आप भूकंप आने पर उठ जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे सिंहासन से तो वो उठ जाते हैं लेकिन वो उठ करके भागते नहीं कहीं, सात कदम आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, खड़े हो करके सोचते हैं क्या करना है। हाँ, अवधि ज्ञान से पता चल गया क्या करना है, अब सभी देव परिवार समेत हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ पर जन्म हुआ है, और आते हैं यहाँ। इंद्र के ज्ञान में जब तीर्थंकर जन्म लेने का वह दृश्य आता है अवधि ज्ञान के उपयोग में, तो वे आदर के साथ खड़े होते हैं और सभी देवों को निर्देश करते हैं कि चलो सबको चलना है और तीर्थंकर के जन्म उत्सव को मनाना है। जन्मोत्सव तीर्थंकरों का हम मनाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा, परंतु हम खुद का ही मना लेते हैं तो मनाना चाहिए। हम अपने आप के जन्म को बहुत विशेष समझते हैं। वो ये समझते हैं हमने आज जन्म लिया, कितनी खुशी हो रही है। अरे संसार में किसी भी गति में जन्म ले ले संसारी प्राणी, ये संसार हुआ है कि मोक्ष मिला है? संसार ही बोला तो संसार में जन्म लेने से खुश होना चाहिए क्या, नाराज होना चाहिए? अरे भगवान मैंने और जन्म ले लिया, ये ठीक नहीं है। मनुष्य गति में जन्म ले लिए, ये भी ठीक नहीं है। जन्मोत्सव मनाया नहीं जाता, और जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसके लिए भी एक मर्यादा है, उसके लिए भी एक संविधान है। उस संविधान के अनुसार जन्मोत्सव मनाया जाता है। कैसा संविधान? तो तीर्थंकरों के अनुसार हमारा जन्म कभी नहीं होता, हम सम्यक्त्व के साथ आए नहीं। पंचम काल में तो कोई भी सम्यक्त्व के साथ जन्मते नहीं, सभी पहले गुणस्थान के साथ ही जन्मते हैं। आते समय क्या हमारे पास सम्यक दर्शन परमार्थ गुण सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान गुण था? नहीं, जन्म के काल में कोई भी गुण हमारे पास नहीं था। तो हम क्या कह करके जन्मोत्सव मनाते हैं? रोने का जन्मते ही कौन, जन्म लेने वाले रोते हैं, रोते हैं। तो रोने, रोना यह गुण है क्या, दोष है? जन्मते समय हम रो रो करके आए, और जन्म के समय में प्राकृतिक रूप से रोए हैं, किसी ने रुलाया नहीं, प्राकृतिक रूप से रोए हैं। और प्राकृतिक रूप से क्यों रोए हैं? हमारा जन्म जो हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है। जन्म जो हुआ है यही बुरा हुआ है। हमको तो मोक्ष में होना चाहिए था, हम मोक्ष में नहीं। आज तो हम संसार में जन्म ले रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है तो रोता है, प्राकृतिक रूप से रोता है। लेकिन क्यों रोता है ये उसको ही पता नहीं। प्राकृतिक रूप से रो रहा है लेकिन क्यों रोता है उसको पता नहीं। हो सकता है उसको कोई दुख होता हो, तकलीफ होती हो। आप जन्म के समय रोए हैं क्या? नहीं। किस कारण से रोए थे याद करो, किस कारण से रोए थे याद करो। याद आ रही? नहीं आती। तो रोए थे अवश्य है ना, रोए थे। जब रोए थे तो रोना बंद किसने कराया था? माँ ने कराया था। लेकिन ऐसे भाव भाव में जन्म जब जब हम लेंगे वहाँ वहाँ रोना ही पड़ेगा। ये रोना न पड़े ऐसा जन्म हमारा हो जाए तो कितना अच्छा। उस जन्मोत्सव का हम मनाएं तो कितनी बढ़िया बात होगी। कैसा जन्म होना चाहिए हमारा? जन्म दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर का जन्म और एक आत्मा का जन्म। आत्मा का जन्म संयम से होता है और शरीर का जन्म असंयम के कारण से होता है। शरीर का जन्म भौतिक कारणों से होता है। इन भौतिक कारणों से बचकर जो आत्मा को एक बार जन्म देता है, आत्मा से एक बार जन्म लेता है, वह महान माना जाता है। उसका ज्ञानोपयोग सार्थक माना जाता है। जो शब्दों का ज्ञान होता है वह द्रव्य श्रुत कहलाता है। देखो भगवान ने क्या कहा है, शब्दों का ज्ञान द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत को हम इकट्ठा करेंगे तो विद्वान बनेंगे। हम क्या बनेंगे? विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे। पर केवल शब्दों को ही इकट्ठा करेंगे तो शब्दों का ज्ञानी बनेंगे। परंतु उन शब्दों में छिपे हुए अर्थों का सदुपयोग करते हुए यदि शब्दों के अनुसार ही हम अपना हित के बारे में सोचेंगे और हित करना प्रारंभ कर देंगे तो हम केवल शब्दों का ज्ञानी नहीं बनेंगे, हम आत्मा का भी ज्ञानी बनेंगे। सुन रहे हैं ना? अब क्या बता रहे हैं देख लो, ज्ञानोपयोग हमारा निरंतर प्रवाहित है। इस निरंतर प्रवाह में, इस प्रवाह को हम मोड़ तो सकते हैं, सुखा नहीं सकते, इसका अभाव नहीं कर सकते। ज्ञान के इस प्रवाह को मोड़ तो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? इस ज्ञान शक्ति को और ज्ञान के प्रवाह को कभी सुखा नहीं सकते। इसलिए आत्मा शाश्वत है, इसका उपयोग भी शाश्वत, ज्ञान भी शाश्वत, और ज्ञान शक्ति को धारण करने वाला द्रव्य भी शाश्वत है। पर्याय की अपेक्षा से यह जरूर विनाशशील है। प्रवाह की अपेक्षा से जो पिछले समय में प्रवाह होता है, अगले समय में वह प्रवाह नहीं रहता, ये पर्याय है। पर्याय की अपेक्षा से जरूर वह मिटनशील है, विनाशशील है, किंतु उस प्रवाह को हम हटा नहीं सकते, प्रवाह को बंद नहीं कर सकते। जल रहेगा तो उसके भीतर तरंगे भी रहेंगे, जल रहेगा तो तरंगे भी रहेंगे, और तरंगे रहेंगे तो प्रवाह भी रहेगा। जल आगे आगे बढ़ता है, वह आगे आगे बढ़ता बढ़ता वह गंगा का जल, हिमालय से निकली हुई गंगा, उसका जल आगे बढ़ करके कहाँ पहुंचना चाह रहा है? हाँ, अपने अस्तित्व को खोने जा रहा है। जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंच जाए, समुद्र में कूद जाए, तो गंगा का अस्तित्व रहेगा क्या समुद्र में? वहां ढलने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? नामकरण चेंज है, सागर। तो क्या दोनों का नाम लेंगे, गंगा सागर? नहीं, गंगा तो नाम हट जाएगा, केवल सागर रहेगा। गंगा सागर में जब विलीन हो जाती है तो सागर बन जाती है, गंगा नहीं रहती। उसी प्रकार हमारा जो वर्तमान में ज्ञानोपयोग है, यह ज्ञानोपयोग किधर बढ़े? परमार्थ की ओर बढ़े, मोक्ष की ओर बढ़े। मोक्ष सागर के समान है, परमार्थ सागर है, वो उसकी ओर बढ़े। और बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच जाए? 12वें गुण स्थान तक यह ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान, ये दो जो नाम है ना, ये दोनों नाम वहां तक शाश्वत है। 12वें गुणस्थान तक मति श्रुत यही नाम, गंगा सिंधु जैसे नाम सागर तक रहते हैं ये नाम, उसी प्रकार मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान, ये केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले समय तक इनका नाम तो श्रुतक ज्ञान ही रहेगा और इसका नाम मति ज्ञान ही रहेगा। जब यही मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान केवल ज्ञान रूपी सागर में कूद जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, उस समय क्या नाम पाएंगे? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब केवल, केवल का क्या अर्थ? केवल सिर्फ, हाँ ओनली, सिर्फ वहाँ पर सिर्फ ज्ञान ही है और कुछ भी भीतर नहीं है। सागर में क्या है? कुछ नहीं है, नदियाँ नहीं है वहाँ। नदियाँ न होने से ही उसको सागर नाम है, और सागर में नदी हो जाए तो फिर सागर उसका नाम हो ही नहीं सकता। जब तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का अस्तित्व तो अपने आत्मा के भीतर है, हम सागर नहीं कहला सकते। हाँ, ये हो सकता है गंगा सागर को, गंगा को गंगा सागर कहना चाहते हैं तो नामकरण हो सकता है, लेकिन गंगा को जब आप सागर कहेंगे तो इस अपेक्षा से कहेंगे कि यही गंगा सागर बनने जा रही है, इसलिए सागर। सागर बनने की योग्यता होने से सागर। जैसे गुरुओं का नाम भी शांति सागर, जैसे गुरुओं का नाम भी विद्या सागर, जैसे गुरुओं का नाम अन्य अन्य सागर से क्यों रखते हैं? हाँ, अच्छे नाम रखते हैं। शिष्य को गुरु अगर नाम रखते हैं ना, जैसे आप लोग बच्चों का नाम अच्छे नाम रखते हैं, बुरे नाम पसंद नहीं करते, तो गुरु भी शिष्य का नाम रखते समय योग्य नाम ही रखेंगे ना। लोग क्या करते हैं, घर में नाम रखते समय सागर रखते ही नहीं, क्योंकि सागर बन न जाइए, सागर बनने से डर रहता है, इसलिए क्या नाम रख देते हैं, वैभव, इतना ही इतना ही, आगे नहीं बढ़ते वो। और गुरु के हाथ में आपने बच्चों को दे दो तो एक शब्द और जोड़ देते हैं वो, हाँ वैभव सागर। माता पिता क्या करते हैं, वैभव क्यों रखते मालूम, उनका वैभव तो सीमित ही है, तो बाहर के वैभव को इकट्ठा करेगा, हमको देगा, ये अपेक्षा रहती है, थोड़ा काम करेगा, थोड़ा धन संपत्ति इकट्ठा करेगा, देगा, ये आशा रहती है, इसलिए वैभव रख देते हैं। और बीच में उसको यदि भावना हुई मुझे तो सागर बनना है, तो सागर की भावना यदि उसमें उत्पन्न हो गई और माता पिता को पता चल गया और माता पिता ने भी कहा कि हमारा भाग्य है ये, हमने तो वैभव इतना ही रखा था, तुम सागर की ओर बढ़ने लगे तो हमारा भाग्य अहो भाग्य है, हमको ये वैभव लेकर के क्या करना है, ये वैभव तो मरण के काल में जरा भी एक परमाणु भी आने वाला नहीं है। कोई धन संपत्ति मरण के काल में माता पिता ले जाते हैं? नहीं है। लेकिन आपका बेटा आपको मरण के काल में ऐसा वैभव दे करके आपको वैभववान बना देगा, जो वैभव कभी खत्म नहीं हो सकता, खत्म ही नहीं रोकता। ऐसा वैभव पाओ किससे? अपने बच्चों से। आपका संलग्न मरण कौन कराएंगे? मरते समय नमोकार मंत्र सुनाने वाले मिल जाए, ये भी बड़े भाग्य के उदय से होता है। रोने वाले ज्यादा मिलते हैं और देखने वाले भीड़ लगती है कि कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है। इसको देखने के लिए जो आते हैं उनकी भीड़ रहती है वहाँ। सब संसारी हैं, सब बेकार लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ। रोने वाले भी बेकार हैं और कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है उनको देखने के लिए आए, ये भी बेकार के लोग हैं। लेकिन नमोकार मंत्र को सुनाने वाला तो कोई बिरला ही उसके बीच में आता है और वो कह रहा है आकर के, रोना नहीं, ऐसा नहीं, क्या हो गया आपको, कुछ रोना नहीं चाहिए, कुछ नहीं खोया, जो कुछ खोया है अच्छा के लिए खोया है, ये समझा रहे हैं। और ये सब अच्छा अच्छा के लिए खोया है, जो गया है गया है, जो रहा है उसको देखो, ये कह रहे हैं। और नमोकार मंत्र सुनाने का प्रयत्न चल रहा है तो लोग कहते हैं ये कहाँ का एक अकेला आ गया, ये बड़ा धर्मात्मा बन करके आ गए, हम तो रोना देखने के लिए आए थे और ये रो मत कह रहा है। देखो अपन सभी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं क्या नहीं, तो मरण काल में रोना और रुलाना या रोने को रोते हुए को देखने के लिए जाना, ये हमारा काम है क्या? नहीं है ना, नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। और अब भी कोई मर जाए, अयो क्या हो गया ये पंचर, अभी कोई घर में कुछ घटना घट गई ना, अभी छोड़ के भागेंगे यहाँ से और वहाँ जाकर के रोते बैठेंगे, आंखों में आंसू दिखाई देंगे, आंखों में आंसू वहाँ जाने के बाद नहीं, यहीं से शुरू हो जाता है, वो गया। ये स्थिति हमारी है, हमारा ज्ञानोपयोग ठीक काम नहीं करता है। ये अभिक्षण ज्ञानोपयोग नहीं है, रोना धोना। अभिक्षण ज्ञानोपयोगी कभी रोता नहीं है, क्योंकि वो अभ्यासशील रहता है, जिनागम को जानता है, शास्त्र को जानता है, जिनवाणी को जानता है, और वो असली जैन है, जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, जानता है आत्मा क्या है, पराया क्या है, इसको जानता है। कैसे जानने लग गया? अभिक्षण ज्ञानोपयोग के कारण से उसको ज्ञान हो गया। स्वाध्याय के बिना कुछ भी ये पता चलता नहीं है, निरंतर स्वाध्याय चलना चाहिए। जो निरंतर स्वाध्याय करता है उसका घर स्वर्ग बन जाता है, स्वर्ग में निरंतर चर्चा होती है, 33 सागर तक चर्चा होती है शास्त्र की, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की चर्चा वहाँ होती है, सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक चर्चा खत्म ही नहीं होती, और यहाँ पर प्रवचन खत्म नहीं होता। हो गया एक घंटा, टाइम ही खत्म हो गया। आज अभिक्षण ज्ञानोपयोग है, ज्ञानोपयोग को कहाँ पर प्रवाहित रखना है, प्रवाह को जरा सा हमें मोड़ना है। विषय कषायों में हमारा ज्ञान रच पच रहा है, विषय कषायों को जानता है, विषय कषायों का ही उपयोग करता है, विषय कषायों में अपने ज्ञान को और ज्ञानोपयोग को प्रवाहित करना, ये ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग है। और सदुपयोग क्या है? हाँ, संयम में लगाना, सम्यक्त्व में लगाना, जिनवाणी के शास्त्र स्वाध्याय में लगाना, निरंतर लगाए रखना। जब तक हम निरंतर लगाए रखते हैं तब तक सदुपयोग, और ये प्रवाह मुड़ गया ना तो गया। नदी का प्रवाह हम रोक तो सकते हैं, मोड़ तो सकते हैं, लेकिन उसको सुखा नहीं सकते, अनादिकाल से सुखा नहीं पाए, लेकिन यह प्रवाह किसमें निरंतर प्रवाहित होता रहा? विषय कषायों में। हमारा ज्ञान विषय कषायों को जानता है, इंद्रिय विषयों को जानता है, उनको इकट्ठा करना जानता है, उनको इकट्ठा करने के लिए ही चिंतन मनन करता है, चिंतन मनन, सतत चिंतन मनन, धन संपदा संपत्ति के कमाने में ही सतत विचार चल रहे हैं ना, तो धन संपत्ति ये सब क्या है? इंद्रिय विषय है, शरीर के लिए है, नश्वर है, ये कोई साथ नहीं आता, शरीर को जलाने के लिए है, और हम उसमें नष्ट हो रहे हैं। हमारी ज्ञान शक्ति को, हमारी प्रवाह को उसमें लगा करके दुरुपयोग हम कर रहे हैं। ये दुरुपयोग करने का प्रवाह को हम मोड़ सकते हैं कि नहीं? मोड़ सकते हैं। इसको ज्ञान में लगाया जाए, परमार्थ में लगाया जाए, आत्म साधना में लगाया जाए, तो निश्चित रूप से इस ज्ञान का अभिक्षण ज्ञानोपयोग बन करके इसका सदुपयोग हो सकता है। अभिक्षण ज्ञानोपयोग ही हमारे लिए कल्याणकारी है, ये भावना बार बार भाएं और आत्मा को पवित्र बनाएं, यही ज्ञानोपयोग भावना का सारभूत विषय है। इसको समझकर हम आगे बढ़े, आत्म कल्याण करें। अहिंसा परमो धर्म की जय।